ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी ने आज प्रातःकालीन सत्र में स्वयं की सत्य पहचान, आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान प्राप्त की, और आपने ये भी समझा कि राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेहपूर्ण संबंध। तो आत्मा साधक है और परमात्मा साध्य है, यानी आत्मा को योग लगाना है और हमें परमात्मा से योग लगाना है। तो आत्मा योग लगाने वाली कौन है ये तो समझा, अभी हम समझेंगे जिनसे योग लगाना है उनका सत्य परिचय क्या है। तो आत्मा के विषय में जो समझा सार रूप में, आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, और शरीर में कहाँ स्थान है आत्मा का? मस्तक के मध्य में ब्रह्मकुटी जिसे कहते हैं, वहाँ आत्मा का निवास है। और आत्मा अपने मूल स्वभाव में सतोगुणी है, सात गुण वाली है, ज्ञान प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता और शक्ति। और परम धाम से आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है और अपना कर्म करती है इस शरीर के माध्यम से। तो स्थाई निवास है परम धाम। तो हम सभी जब ईश्वर के विषय में बात करते हैं तो हम सभी भगवान को मानते हैं, मानते हैं। भारत में तो कोई नास्तिक नहीं होता है, कोई है यहाँ नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता हो? सभी मानते हैं। और हम सभी ईश्वर को याद भी करते हैं, हमारी अपनी अपनी विधि है, परंपरा है, पूजा पाठ आराधना जो भी विधि हम अपनाते हैं। और खासकर जब दुख होता है जीवन में तो हम अवश्य ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोए, जो सुख में सिमरन करे तो दुख आए को। लेकिन हमारी एक शिकायत होती है, मन भगवान में नहीं लगता, मन भटक जाता है। जब ये भी भगवान को याद करने लगते हैं मन एकाग्र नहीं होता है। ये शिकायत किसी व्यक्ति को याद करने के लिए शिकायत नहीं होती हमारी, भगवान को याद करने के लिए शिकायत होती है। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा की सत्य पहचान नहीं है। मन को जिस विषय का ज्ञान नहीं है मन उस विषय में नहीं लग सकता। मानो आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो आप उसको याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो किसी को भी याद करने के लिए पहले परिचय होना जरूरी है और उसकी याद हमें आए, उसके लिए उनसे स्नेह और संबंध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमारी याद के दायरे में कौन होते हैं? हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे संबंधी। तो परमात्मा से परिचय नहीं है इसलिए वो संबंध भी ईश्वर से हम अनुभव नहीं कर पाते, और इसलिए मन ईश्वर की याद में एकाग्र नहीं हो पाता। और दूसरा कारण है हमारे मन में विकारों रूपी अशुद्धि आ चुकी है, और ये भी कारण बनता है कि मन ईश्वर में नहीं लग पाता। और फिर हमें स्वयं की भी पहचान नहीं थी, वो पहचान तो हमने प्राप्त की है। तो जब हम ईश्वर के विषय में बात करते हैं तो अनेक विश्वास अनेक मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, जिसके लिए कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, जितने दिमाग उतने विचार। कोई कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यानी आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा माना अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा भी कहते हैं। कुछ कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र है माना सब जगह है, कण कण में भगवान है, जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। तो भगवान सब जगह हैं, ये तो बहुत प्रबल मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। फिर कुछ मानते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो निराकार निर्गुण निरंजन है, उनका हमारे जैसा कोई नाम रूप नहीं है, ये भी मान्यता है। कुछ मानते हैं हमारे इष्ट देव, हमारे धर्म पिता, हमारे गुरु ही भगवान हैं। फिर कुछ मानते हैं नेचर इज गॉड, प्रकृति ही सब कुछ है, खासकर जो साइंटिस्ट हैं फिजिसिस्ट हैं वो प्रकृति को मानते हैं, ये प्रकृति ही परमेश्वर है। फिर कुछ मानते हैं भगवान है ही नहीं, और कुछ मानते हैं कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म करो दुनिया में बस यही भगवान की आराधना है। अब ये जो मान्यताएं हैं सब एक दो के विरोधाभासी, तो सत्य क्या है? हम कहते हैं ना ईश्वर सत्य है, और हमारा विवेक ये स्वीकार करता है कि ईश्वर एक है, तो फिर इसमें से सत्य भी एक होगा। अब हमारी स्थिति क्या है इतनी मान्यताओं के होते हुए, जैसे एक कहानी आती है कि एक बार 5 अंधे किसी नगर से जा रहे थे और उसी सड़क से हाथी भी गुजर रहा था, तो हाथी के कारण बहुत बच्चे उसके पीछे थे, वो उनके लिए कुतूहल का विषय था, तो आवाज कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या है यहाँ पर, क्यों इतना शोर हो रहा है, तो बोला हाथी जा रहा है। तो उन्होंने तो हाथी देखा नहीं था, देखने का प्रश्न भी नहीं क्योंकि वो तो अंधे थे, तो उन्होंने पूछा ये हाथी क्या होता है, तो बोला एक बहुत बड़ा जानवर होता है। तो उनको भी जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने आपस में निश्चय किया कि ये हाथी जब रुकेगा तो हम इसको हाथ लगा के देखेंगे ये कैसा होता है। तो वो हाथी रुका तो उन सब ने हाथी को छुआ, तो एक ने उसकी पीठ को छुआ, एक ने टांग को छुआ, एक ने कान को छुआ, एक ने सूंड को छुआ, एक ने पूंछ को छुआ, और फिर वो आपस में उसके बारे में जो उनको लगा वो आपस में एक दो को बताने लगे। तो जिसने पीठ को छुआ था उसने कहा ये हाथी तो मुझे दीवार जैसा लग रहा था, जिसने टांग को छुआ ये हाथी तो मुझे खंभे जैसा लग रहा था, जिसने कान को छुआ उसने कहा ये तो सुपड़े जैसा लग रहा था, ना वो अनाज साफ करने वाला सुपड़ा होता है ना, हाथी के कान इतने बड़े बड़े होते हैं। फिर जिसने पूंछ को छुआ उसने कहा ये तो रस्सी जैसा लग रहा था, जिसने सूंड को छुआ उसने कहा ये तो पाइप जैसा लग रहा था। अब हाथी तो इनमें से एक जैसा भी नहीं है, क्यों गलती हो रही है? क्योंकि वो पूरे हाथी को एक साथ देख नहीं पा रहे, वो सिर्फ एक अंग को छूकर अनुमान लगा रहे हैं कि हाथी क्या है। तो ऐसे ही हमारे साथ स्थिति है, है ना, वो जो पांचों भी अलग जो बता रहे हैं अगर उनको भी मिला दिया जाए तो भी हाथी तो नहीं बनता है। तो हम भी भगवान को नहीं देखते हैं, हम अनुभव करते हैं ईश्वर को, और हम कब अनुभव करते हैं, जैसे कहा जीवन में जब दुख आता है कष्ट आता है तब भगवान को हम याद करते हैं, फिर हमें लोग राय देते हैं, राय देते हैं माना देखो हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करो रोज, हनुमान जी संकट मोचक हैं, बहुत जल्दी आपका संकट दूर हो जाएगा। फिर कोई कहते हैं ये देवी सिद्ध देवी हैं, ये देवी के दर्शन से सब मनोकामना पूरी हो जाती है, या ये गुरु के पास आप जाओ ये गुरु भी सिद्ध गुरु हैं। अब हमने वो किया जो भी हमें राय दी गई, व्रत उपवास की मंत्र की गुरु की जो भी, और हमने किया और सचमुच हमारा काम हो गया, यह हमारा जो कष्ट था वो दूर हो गया, तो मेरी भावना किसमें बैठ गई, मेरे लिए भगवान कौन हो गए, जिनके माध्यम से मुझे वो प्राप्ति हुई। लेकिन वो परमात्मा का एक शक्ति का अनुभव है किसी के माध्यम से। जैसे उन्होंने हाथी के एक अंग को छुआ, वो तो हाथी का रूप है ही नहीं, हाथी का रूप तो उससे बिल्कुल अलग है। तो परमात्मा का जो संपूर्ण रूप है वो तो उससे बिल्कुल अलग है। और इसीलिए कहा, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। तो वो ईश्वर का सत्य है ही नहीं, उस सत्य तक हम पहुंचे ही नहीं। तो फिर ईश्वर का सत्य क्या है? तो कई बार हम देखते हैं सत्य को भी अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सत्य भी अलग अलग रूप से प्रकट किया जाता है। जैसे विज्ञान कहता है जो प्रयोगशाला में सिद्ध हो जाए वही सत्य है, माना विज्ञान उसको ही मानता है। क्या सब कुछ प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है? एक एक जोक की तरह है कि एक प्रोफेसर नास्तिक थे और वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, तो भगवान की कुछ बात निकली है ना, तो नास्तिक थे तो उन्होंने कोशिश की बताने की कि भगवान नहीं है। तो उन्होंने क्लासरूम की दो तीन चीजें बताई एग्जाम्पल के रूप में, देखो बच्चों आपको ये लैपटॉप दिखाई देता है, उन्होंने कहा दिखाई देता है, तो ये है, ये ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, तो ये है, फिर ये माइक दिखाई देता है, हाँ, तो क्या भगवान दिखाई देता है? कहा नहीं दिखाई देता है, तो भगवान नहीं है। तो एक जो स्टूडेंट था वो थोड़ा होशियार था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा सर मुझे भी सवाल पूछना है। तो उन्होंने कहा पूछो, तो उसने पूछा क्या हमारे सर का दिमाग दिखाई देता है? तो क्या कहेंगे, दिखाई देता है नहीं देता? तो क्या दिमाग नहीं है? तो दुनिया में सब चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, बहुत चीजों को हम अनुभव से जानते हैं। जैसे आपने मॉर्निंग सेशन में भी समझा होगा कि आत्मा भी हमें दिखाई नहीं देती है, हवा है हमें दिखाई नहीं देती है, खुशबू हमें दिखाई नहीं देती है, इलेक्ट्रिसिटी से ये सारे साधन चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई नहीं देती है, अणु परमाणु हमें दिखाई नहीं देते, वो कोविड आया वायरस, जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी आंखों की क्षमता सीमित है, हम एक सीमित क्षमता तक ही देख सकते हैं। मानो अगर मेरी आंखों में कोई रोग है तो हम नॉर्मल व्यक्ति जितना भी नहीं देख सकते, और किसी को आंख में मोती आ जाता है तो वो बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो दुनिया में वो चीजें ही नहीं है, ये हमारी आंखों की क्षमता की कमी है कि हम नहीं देख पा रहे। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम अनुभव से जानते हैं। फिर दूसरा, राजनीतिक रूप से सत्य किसको मानते हैं? राजनीतिक रूप से सत्य मानते हैं बहुमत, जिसको बहुमत मिल जाए, अब चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, अगर उसे बहुमत मिल गया तो वो सत्ता में आ जाएगा। हाँ, जैसे फूलन देवी डाकू थी लेकिन वो सांसद बन गई, क्योंकि जब उसने चुनाव लड़ा तो उसे बहुमत मिल गया, तो वो भले ही डाकू थी लेकिन बहुमत बहुमत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही कानून किसको सत्य मानता है? कानून सत्य मानता है गवाह को, अगर गवाह ने गवाही दे दी, चाहे झूठी गवाही दे करके वो दोषी को निर्दोष साबित कर दे या निर्दोष को दोषी साबित कर दे, होता है ऐसा, तो कौन सत्य हो गया? गवाह दोषी को निर्दोष बना सकता है, निर्दोष को दोषी बना सकता है, तो गवाह ही सत्य है। ऐसे ही समाज में सत्य किसको माना जाता है? जिसके पास कोई पावर है, पावर वाला जो बात कहेगा वो सही है, चाहे वो धन की शक्ति है, पद की शक्ति है, चाहे उसके पास बाहुबल है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो समाज में ये चलता है। और आध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म क्या कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। जगत क्यों मिथ्या है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो अध्यात्म संसार को झूठा कहता है। झूठा कहने का मतलब ये नहीं दुनिया है ही नहीं, दुनिया तो है लेकिन हर पल इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, इसीलिए इसको झूठा कहा गया। लेकिन परमात्मा सदा एक जैसा है, वो कभी भी नहीं बदलता है, इसीलिए उसे सत्य कहा गया। सत्य माना अविनाशी, अपरिवर्तनशील। माना सत्य शब्द के संस्कृत में दो तीन अर्थ होते हैं, एक होता है सत्य, दूसरा अर्थ होता है जो अविनाशी है। तो परमात्मा सदा सत्य है क्योंकि वो सदा एक जैसा है और वो त्रिगुणातीत है। वो सतो रजो तमो, ये तीन गुणों में भी नहीं आता। आत्माएं सतो रजो तमो, इन तीन गुणों में आती है। तो फिर ईश्वर का सत्य क्या है सही अर्थों में? तो जैसे एक सुनार के पास कसौटी है सोने की, उसे पता है कि खरा सोना है या मिलावट वाला सोना है, और वो मिलावट भी कितनी मिलावट है, वो उसके पास पूरा कसौटी यानी वो ज्ञान होता है, उसको वो समझ है। ऐसे ही परमात्मा की परख या कसौटी पांच बातें हैं। वो कौन सी पांच बातें हैं? परमात्मा हम किसे कहेंगे? परमात्मा वो है जो सर्व धर्म मान्य है, जिसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमान का भगवान अलग है, ईसाइयों का भगवान अलग है, नहीं। हमको जैसे कहा, हाँ, हमारा विवेक स्वीकार करता है कि भगवान एक है, तो वो सभी धर्मों के लिए वो एक है। वो कौन है जो सर्व धर्म मान्य है? दूसरा, वो सर्वोच्च शक्ति है, उससे ऊंचा कोई नहीं। हम उसको परम आत्मा कहते हैं, तो परम का मतलब ही क्या है? परम का मतलब ही क्या है? जो ऊंचा है, जो सर्वोच्च है। जो सर्वोच्च होता है उससे ऊंचा फिर कोई नहीं होता। तीसरा है, परमात्मा सर्व से न्यारा है। वो जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख से न्यारा है, उसे हम परमात्मा कहेंगे। फिर वो सर्वज्ञ है, जो सर्व का ज्ञाता है और सर्व का दाता है। तो ये परमात्मा का सत्य है। तो जो इसमें सिद्ध होता है, माना जो इस कसौटी पर खरा उतरेगा, उसे हम परमात्मा कह सकते हैं। तो फिर वो कौन है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझेंगे कि सर्वोच्च और सर्वधर्म मान्य कौन है। इसे कहा ना, परमात्मा वो है जो सर्वधर्म मान्य है और सर्वोच्च शक्ति। तो यहां हम देख रहे हैं सभी धर्मों में परमात्मा के विषय में कुछ ना कुछ कहा गया। जो भी धर्म पिता हुए उन्होंने भगवान की ओर इशारा दिया। तो क्या उनका इशारा रहा ईश्वर के प्रति? हर एक धर्म वाले ने क्या कहा? तो जैसे क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट उनके धर्म पिता हुए और क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, लीड मी दाई काइंडली लाइट। मैं भगवान का पुत्र हूं और परमात्मा ज्योति है। गॉड इज लाइट, हिंदी में कहेंगे तो ज्योति। और इसीलिए जब आप कभी भी चर्च में जाते हैं तो आप देखते हैं वो प्रेयर कैसे करते हैं, वो कैंडल जलाएंगे ना, ज्योति के प्रतीक के रूप में कैंडल जलाते हैं और फिर वो प्रेयर करते हैं। और उन्होंने हमेशा अपने को सन ऑफ गॉड का, कभी भी खुद को भगवान नहीं बताया, उस पिता का मैं भेजा हुआ पुत्र हूँ, इसलिए गॉड फादर कहा, भगवान को कहा गॉड फादर, गॉड फादर को याद करो। तो इस रूप में वो लाइट को भगवान मानते हैं। अगर हम मुस्लिम धर्म में देखें तो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हुए, जिन्होंने कहा पैगंबर माना जो अल्लाह का पैगाम लेकर आया है ना, अल्लाह का संदेश लेकर आया है, और उन्होंने अल्लाह के बारे में कहा नूरे इलाही ना, उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह नूर है। नूर माना लाइट, अगर हम इंग्लिश में कहेंगे लाइट, हिंदी में कहेंगे ज्योति, उर्दू में कहा हमने उसको नूर। और जब वो मक्का मदीना में हज करने के लिए जाते हैं, जैसे हिंदू तीर्थ करते हैं, मानते हैं कि तीर्थ से हमें पुण्य मिलता है, हमारे पाप कटते हैं, ऐसे ही मुस्लिम तीर्थ किसको मानते हैं, हज करने को। तो वो जीवन में एक बार कोशिश करते हैं कि हम हज करें, और हज में मक्का मदीना में क्या है आप देख रहे हैं चित्र में, वहां पर है संगे अस्वद, वो स्थान बना हुआ है जो मस्जिद का स्थान बना हुआ है उसे संगे अस्वद कहते हैं, और वहां काबा का पत्थर है जो आप देख रहे हैं। वो पत्थर कैसा है, गोल सा पत्थर है, कोई मनुष्य का प्रतीक नहीं है। आप मस्जिद में भी जाएंगे ना तो मस्जिद में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, मस्जिद में वो सिर्फ जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं जो उनकी शिक्षाएं हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को नूर कहा, तो इसीलिए वो कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते मुस्लिम धर्म में। और वहां पर भी काबा में भी कोई ऐसी मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक गोल पत्थर उसके प्रतीक के, अल्लाह के प्रतीक के रूप में वो मानते हैं कि जब उन्होंने कहा कि आप कैसे हो तो आसमान से वो पत्थर आया, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो वो उसको पहले चूमते थे, लेकिन आजकल बहुत संख्या होती है तो उसको परिक्रमा देते हैं, उसको सुरक्षित रखा हुआ है। और उन्होंने कहा आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, कि मैं तो एक इंसान हूं तो मुझे खुदा मत कहो, लेकिन उस खुदा का नूर मुझे मिला है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो निश्चित है उन्होंने खुद को अल्लाह कहा ही नहीं, और उन्होंने अल्लाह का संदेश दिया ना पैगंबर के रूप में। तो मुस्लिम धर्म में भी नूर के रूप में यानी लाइट के रूप में अल्लाह की मान्यता है। अब हम सिख धर्म में देखें जो तीसरा मुख्य धर्म है, तो गुरु नानक देव जी उन्होंने कहा एक ओंकार सत नाम अकाल पुरुष कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अजोनी साहब, है भी सच हो भी सच आदि सद जुगादि सच, ये उनके वचन हैं भगवान के बारे में उनकी भाषा में, हर एक ने अपनी भाषा में कहा। तो जब उन्होंने कहा एक ओंकार माना परमात्मा एक है निराकार है, जो आप देख रहे हैं ये गुरुमुखी भाषा में लिखा हुआ है एक ओंकार, वो एक है निराकार है और वो सत्य है, वो निर्भय है निर्वैर है काल से परे है, और ऐसे ईश्वर का मैं दास हूं। तो उन्होंने भी कभी खुद को भगवान नहीं बताया, भले ही सिख धर्म में 10 गुरु हुए, और जो गुरु ग्रंथ साहब है वो सबकी शिक्षाओं का सार है। तो आप कभी भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो क्या देखते हैं हम, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती वहां पर, क्या रखा है, गुरु ग्रंथ साहब रखा है, और उसे वो पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, और जो गुरुओं ने कहा उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी भगवान को निराकार कहा, कोई मूर्त रूप नहीं है। ऐसे ही बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उन्हें दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ। और जैन जो बौद्ध धर्म वाले हैं अनेक देशों में हैं, तो खास जापान में जो शिंतोइज्म उनकी ब्रांच है वो एक 3 फुट ऊंचाई पर 3 फुट दूरी पर एक गोल सा पत्थर बना करके उसका ध्यान करते हैं, जिसे वो चिनकोन सेकी कहते हैं यानी शांति का दाता। तो इस रूप में वो भी परमात्मा को निराकार स्वरूप में ध्यान करते हैं। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो चौथा मुख्य धर्म हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में हम एक नहीं दो नहीं चार नहीं 10 नहीं कितने भगवान मानते हैं, कितने देवी देवता हैं हमारे, किसने सुना है 33 करोड़ के बारे में, वो हाथ उठाएं। हाँ हाँ, काफी लोगों ने सुना है। तो हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च और सर्वधर्म मानने की। तो हमारे ये इतने देवी देवताओं को हम पूज नहीं सकते, हम सिर्फ इनका गायन करते हैं। माना सिर्फ कहने में आता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं, हम पूजा किसकी करते हैं? जो मुख्य मुख्य हैं, मुख्य में श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, शंकर जी, ब्रह्मा, विष्णु, देवियां जो भी हैं, हाँ इन सब की हम पूजा करते हैं, जो मुख्य देवता हैं। तो हम देखते हैं ये भी एक दो से ऊंचे हैं। जब हम सर्वोच्च की बात कर रहे हैं तो ये सर्वोच्च नहीं, और सर्वधर्म मान्य तो है ही नहीं, दूसरे धर्म तो उनको मानते ही नहीं। तो जैसे श्री राम ने, जब उनको रावण से युद्ध करना था, समुद्र पार करना था, तो क्या किया उन्होंने? शिवलिंग की स्थापना की, शिव की पूजा की, और उसे कहा रामेश्वरम। रामेश्वरम माना राम के ईश्वर। तो राम के ईश्वर कौन हो गए? शिव। ऐसे ही श्री कृष्ण ने महाभारत के पहले वृंदावन में शिव की पूजा की, उसे कहा गोपेश्वरम। तो वो भी शिव, उनसे ऊंचे हो गए क्योंकि उन्होंने शिव की पूजा की। ऐसे ही जितनी भी देवियां हैं हमारी, वो है शिव शक्ति, दुर्गा, काली, अम्बा, और भी जो भी हम जिनके भी पूजा करते हैं, वो देवियों को शिव शक्ति कहते हैं। कि संसार से असुरों का संहार करने के लिए शिव ने देवियों को उत्पन्न किया, इसलिए उन्हें असुर संहारिणी कहते हैं ना, दिखाते हैं अष्टभुजाधारी, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो उनके भी रचयिता कौन हो गए? शिव। तो शिव उनके भी ऊंचे, उनसे भी ऊंचे हो गए। फिर हम मानो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी ने किसकी भक्ति की? श्री राम की। श्री राम ने किसकी की? शिव जी की। तो ऊंचे तो सर्वोच्च तो शिव हो गए। ऐसे ही मानो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश जी के भी पिता कौन है? शिव हो गए। मानो हम गुरु को मानते हैं, विवेकानंद को मानते हैं, विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसके भक्त थे? काली देवी के। और काली देवी कौन है? शिव शक्ति। तो अगर हम देखेंगे तो हरेक के लिए सर्वोच्च, जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनके लिए सर्वोच्च जो हैं वो शिव हैं। और इसीलिए शिव को हम महादेव कहते हैं, यानी वो देवों के भी देव हैं। तो केवल शिव ही हिंदू धर्म में ऐसे प्रतिमा हैं जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जो आप चित्र में देख रहे हैं। शिवलिंग माना कोई मनुष्य रूप नहीं है। कौन सा रूप है? जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति का प्रतीक। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख रूप से तीर्थ माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में किसी ने सुना है? हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है ना चित्र में, ये 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रहा है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ है, अमरनाथ है, विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, है ना, रामेश्वर, नाग, हाँ, मल्लिकार्जुन, बैद्यनाथ, ऐसे 12 ये ज्योतिर्लिंग हैं, जो उनके कर्तव्य वाचक नाम है। शिवजी ने जो अलग अलग कर्तव्य किए, उनके अलग अलग नाम अलग अलग ज्योतिर्लिंग को दिए गए। तो ज्योतिर्लिंग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्योति का प्रतीक। ज्योति का प्रतीक, ये जो हम पूजा करते हैं शिवलिंग की, ये क्या है? ज्योति का प्रतीक है। अब समझो हमने ज्योति जलाई, माना दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, तो लौ का आकार कैसा होता है? या तो ओवल होता है या गोल होता है। तो हमने क्या आकार दिया शिव जी को? या तो ओवल होता है शिवलिंग मंदिरों में, या फिर गोल होता है। अगर हमने उनको आसन दिया तो हम थोड़ा ऊंचाई पर उसका आसन बनाकर रखते हैं, नहीं तो जमीन पर भी शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं। तो वास्तव में हम भी ज्योति स्वरूप की ही सर्वोच्च रूप में पूजा कर रहे हैं, जो सर्व धर्म में भी मान्य है। सभी धर्मों ने परमात्मा के ज्योति स्वरूप को ही माना है। तो हिंदू धर्म में भी सर्वोच्च पूज्य स्वरूप कौन सा है? शिव, जिन्हें हम ज्योति के स्वरूप में पूजते हैं। लेकिन हम लोग कई बार भ्रमित होते हैं शिव जी और शंकर के बीच में। शिव और शंकर को हम एक मान लेते हैं, तो शिव और शंकर आप देख रहे हैं दो रूप ही अलग अलग हैं। शंकर जी साकारी रूपधारी हैं, है ना, उनका मनुष्य रूप, देवताई स्वरूप मनुष्य जैसा ही है, और शिव जी निराकार हैं, ज्योति ज्योति स्वरूप हैं। शंकर जी जो हैं तपस्वी रूप में दिखाए गए हैं, और किसी भी देवता को तपस्वी रूप में नहीं दिखाया गया, सिर्फ शंकर जी ही तपस्वी रूप में दिखाए गए हैं। तो जरूर वो किसी की तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो किसकी साधना कर रहे हैं? जरूर उनसे जो ऊंचा है उसकी साधना कर रहे हैं। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं शंकर जी के सामने शिवलिंग होता है मंदिरों में, तो वो किसकी आराधना करते हैं? शिव जी की आराधना करते हैं, शिव उनके पिता हैं, और अपनी आराधना से, अपनी साधना से वो शिव जी के सदा समीप हैं। इसलिए हम उनका नाम साथ में लेते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ हम बोलते हैं। अब शिव शंकर भोलेनाथ बोलने का मतलब ये नहीं दोनों एक हैं, जैसे हम राधे कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, तो क्या दोनों एक हैं? क्या कहेंगे, दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि समीप साथी हैं इसलिए हम उनका नाम साथ साथ लेते हैं। तो शिव शंकर का नाम हम साथ लेते हैं, इसका मतलब वो एक दो के समीप साथी हैं, लेकिन वो एक नहीं हैं। फिर शंकर जी का कर्तव्य भी अलग है, वो तो विनाशकारी देवता हैं। कहते हैं वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो संसार में प्रलय आ जाती है ना, और शिव तो कल्याणकारी हैं, शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो परमात्मा शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिव परमात्मा हैं और शंकर देवता हैं, और वो त्रिमूर्ति देवता में से एक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीन देवताएं हैं उनमें से शंकर जी एक देवता हैं, और शिव जो हैं वो परमात्मा है। अब हम शिव जी के ऊपर तीन लाइन देखते हैं ना, ये तीन लाइन जो हैं इसमें आप क्लियर देख रहे हैं, शिवलिंग पर तीन लाइन बनाते हैं। शिव के जो भक्त होते हैं वो भी माथे पर तीन लाइन बनाते हैं, तो उसका भी अर्थ है। वो तीन लाइन का क्या अर्थ है? वो त्रिमूर्ति हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं। माना तीन तीन विशेषताएं हैं उनके अंदर, इसीलिए वो तीन लाइन बनाते हैं। तो वो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, इसीलिए वो सर्वज्ञ हैं। हमने कहा ना परमात्मा वो हैं जो सर्वज्ञ हैं। तो मनुष्य तो एक ही काल को भी पूरी तरह से नहीं जान पाते, है ना, लेकिन परमात्मा तीनों कालों को जानने वाले हैं, सर्व विषयों के भी ज्ञाता हैं। आत्मा तो एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं रखती है, अल्पज्ञ कहते हैं आत्मा को, इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ हैं। फिर वो त्रिमूर्ति हैं, माना तीन देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता हैं, और इनके द्वारा वो तीन कर्तव्य कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर जी द्वारा विनाश। तो इसीलिए हम इनको सर्वशक्तिवान कहते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, क्योंकि ये तीन कर्तव्य के लिए परमात्मा इन तीन देवताओं के द्वारा कर्तव्य कराते हैं। फिर तीसरा जो है वो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों के भी वो मालिक हैं। आपने समझा तीन लोक कौन से हैं मॉर्निंग सेशन में, एक तो ये साकार मनुष्य लोक जो भौतिक जगत है, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक है, और उसके ऊपर परम धाम है जहां सभी आत्माओं का भी निवास है। तो ये तीनों लोकों के मालिक हैं परमात्मा, इसीलिए उन्हें त्रिलोकीनाथ कहते हैं। और इसलिए शिव जी की जब पूजा करते हैं तो तीन पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, और किसी देवी देवता के ऊपर बेलपत्र नहीं चढ़ाते, किसके ऊपर चढ़ाते हैं? क्योंकि ये तीन दिन विशेषताएं परमात्मा शिव की हैं, और इसके आधार पर वो ये त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। अब हम उन्हें शिव कहते हैं, हमने शिव नाम दिया उन्हें, और धर्म वाले खुदा अल्लाह कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन हम उन्हें शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शिव यथा नाम तथा गुण वाला नाम है। संस्कृत शब्द है शिव, क्योंकि हमारी प्राचीन आध्यात्मिक भाषा संस्कृत रही है, तो संस्कृत में शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो कल्याणकारी है वो शिव है। फिर दूसरा अर्थ होता है पवित्र, जो सदा पवित्र है वो शिव है, इसलिए उन्हें सदा शिव भी कहते हैं। फिर तीसरा अर्थ होता है शांति, जो शांति दाता है वो शिव है। चौथा अर्थ होता है बिंदु, जो बिंदु रूप है वो शिव है। तो परमात्मा का नाम शिव है, क्योंकि वो गुणों, वही गुणों वाले हैं। संसार में मनुष्यों के नाम यथा नाम तथा गुण वाले नहीं होते। नाम होगा शांति, और जीवन में जरा भी शांति, नाम होगा रामचंद्र, एक जैसा, एक भी राम जैसा गुण नहीं। नाम होगा संतोष, लेकिन संतोष जरा भी, देखते हैं ना, जरूरी नहीं है कि जो नाम है व्यक्ति का वही गुण भी हो, है ना। लेकिन परमात्मा का यथा नाम तथा गुण है, इसीलिए हमने उन्हें शिव कहा। अन्य धर्म वालों ने उन्हें अपना अपना नाम दिया, लेकिन है वो ही ज्योति स्वरूप परमात्मा, जो सर्वोच्च है और जो सभी धर्मों में मान्य है। तो परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या हुआ? सत्य स्वरूप हुआ परम ज्योति स्वरूप, और नाम, उनका नाम हुआ शिव। तो हम उन्हें शिव कहते हैं, क्योंकि वो अपने गुणों से शिव हैं। अब हमने उनको परम आत्मा कहा, परम प्लस आत्मा, यानी परमात्मा भी एक आत्मा है जो परम है। तो किसमें परम है? क्या वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, इतना तेज है उसका, इसलिए हमने उसको परमात्मा कहा? नहीं, परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है ना, परमात्मा भी एक आत्मा है। तो आत्मा के समान ही वो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुणों में परम है, यानी गुणों में वो सागर के समान है। दुनिया में भी देखते हैं ना, कोई व्यक्ति बड़ा किससे माना जाता है, किससे माना जाता है? कोई शारीरिक डील डोल से बड़ा है, बॉडी बिल्ट है अच्छी, या कोई पद में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, कौन बड़ा माना जाता है? गुणों में बड़ा है, कौन बड़ा माना जाता है? जो गुणों में बड़ा है, है ना। तो परमात्मा भी गुणों में परम है। वो ज्ञान के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं, वो प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनकी तुलना हम सागर से करते हैं, यानी जैसे सागर अथाह होता है, सागर कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा के गुण भी अथाह हैं, सदा ही हैं। आत्मा के गुण कम ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए आत्मा को हम स्वरूप कहते हैं। वो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, यानी कभी वो प्रेम स्वरूप है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, नफरत भी आ जाती है, कभी गुस्सा भी आ जाता है ना। तो आत्मा के गुण बदलते रहते हैं, लेकिन परमात्मा सदा ही शांति का सागर है, सदा ही प्यार का सागर है। और इसीलिए उसकी महिमा में शास्त्रों में कहा गया, सारे सागर को स्याही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ, और स्वयं सरस्वती बैठ करके भी उसकी महिमा लिखे, तो भी परमात्मा की महिमा क्या है? अपरम अपार, उसकी महिमा का पार पाया नहीं जा सकता। तो जैसे हम नाम के विषय में बता रहे थे, तो एक जोक आता है उसके ऊपर कि एक बार एक व्यक्ति, उसकी शादी हुई, उसका नाम था छज्जूमल, गांव का व्यक्ति था, गांव में शादी हुई। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये क्या नाम है छज्जूमल, है ना, ये नाम आप चेंज करो, लोग शादी के बाद अपना नाम बदल देते हैं। तो उसने सोचा ठीक है, वो भोला था, इसको पसंद नहीं है, तो मैं दो चार लोगों को नाम पूछता हूँ, जो नाम अच्छा लगेगा वही रख लूंगा। तो वो गया गांव में, तो देखा एक औरत ओखली कूट रही है, उससे पूछा उसने कि तुम्हारा नाम क्या है, बोला मेरा नाम लक्ष्मी है। उसने कहा ये लक्ष्मी ओखली कूट रही है, ठीक नहीं है। फिर वो आगे गया, एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो धनपत बोला ये भीख मांग रहा है, नहीं ये भी ठीक नहीं है। फिर आगे गया तो एक किसी की मृत्यु हो गई थी, लोग उसे लेके जा रहे थे, तो उसने पूछा इसका नाम क्या था जिसकी मृत्यु हो गई, उसने कहा उसका नाम था अमरनाथ। तो उसने कहा अमरनाथ मतलब उसको वो भी जचा नहीं। वो वापस आया, उसने अपनी पत्नी को कहा लक्ष्मी कूटे ओखली धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी मर गए मेरा छज्जू नाम ही। तो दुनिया में जैसे बताया नाम कुछ और होता है और होता कुछ और का और ही है इंसान का, लेकिन परमात्मा के वही गुण है जो उनका नाम है। और देखा कि परमात्मा गुणों में कैसे सागर के समान है, तो परमात्मा को हम उनके गुणों से ही याद करते हैं और उन गुणों का ही हम अनुभव करते हैं जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां चित्र में कि परमात्मा के कुछ गुण जो हैं वो दर्शाए गए हैं। वो सबके सुख के दाता हैं, दुख हरता हैं, मुक्ति दाता हैं, सबकी जीवन नैया को वो पार ले जाने वाले हैं। तो कहते हैं भले ही वो गुणों में रूप में बिंदु हैं, लेकिन गुणों में वो सिंधु के समान है। अब परमात्मा कहाँ निवास करते हैं, भगवान का धाम कहाँ है, क्या वो हमारे हृदय में निवास करते हैं या परमात्मा का अपना परम धाम है, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हमने एक मान्यता सुनी कि परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में भगवान है, तो और हमने सुना है तो हम मानते भी हैं, मानते हैं ना कि नहीं मानते हैं, मानते हैं ना कि भगवान कहाँ है, सब जगह। अच्छा अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हम परिचय सुन रहे हैं ना ईश्वर का, ये स्वयं परमात्मा शिव के द्वारा ही दिया हुआ परिचय है। तो शिव बाबा ने क्या बताया, अच्छा मानो अगर भगवान सब जगह है, सब में परमात्मा है ना, तो क्या होता है, जहां गुणी होता है वहां गुण जरूर होते हैं। कहीं आग जल रही है और गर्मी ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। सूर्य निकला है और प्रकाश ना हो, ऐसा हो सकता है? अगर गुलाब के फूलों के बगीचे से हम गुजरे और खुशबू ना आए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं होगा ना, क्योंकि जो गुण जिसका है वो प्रकट होता ही है। आप सागर के किनारे जाओ, आपको हवा ना लगे, होगा नहीं। तो भगवान के गुण जो शांति का सागर है, जो प्यार का सागर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो सबके अंदर है, तो सब इंसान कैसे होने चाहिए? जड़ प्रकृति सब जगह भगवान है, सब कैसे होने चाहिए? उसके गुण दिखाई देने चाहिए, अनुभव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हर एक इंसान प्रेम करने वाला होना चाहिए, सुख देने वाला होना चाहिए, शांत प्रकृति का होना चाहिए। और हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं दुनिया में, क्या है आज दुनिया में? पांच विकारों के वश अत्याचार है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अनाचार है, आप जो भी कह लो, ये सब है। यानी पांच विकार सर्वव्यापी हैं। कोई कह सकता है मेरे अंदर पांच विकार नहीं है? कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, है या नहीं है? आज दुनिया में जो भी बुरे कर्म हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं? और अगर भगवान सब जगह हैं तो वो क्या वो रोक नहीं सकता? आज माता पिता के सामने भी अगर बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, भाई क्यों लड़ रहे हो, हम बैठे हैं ना, हमको बताओ क्या चाहिए? तो भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो दुनिया में है और वो ये सब नहीं रोक सकता, ये सब जो भी बुरा और संसार में गलत हो रहा है रोक सकता है, नहीं रोक सकता? तो अगर नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब वो यहाँ है या नहीं है, दोनों बातें उसके विपरीत जा रही हैं। तो ये बहुत सुंदर भावना है, भगवान सब जगह है, ये एक सुंदर भावना है। भावना है माना, कहा कि भाई देखो सब में ईश्वर का रूप है, तो सबको प्रेम करो, किसी को दुख मत दो, सबका सम्मान करो। पर क्या हम ऐसा करते हैं? लेकिन सिद्धांतिक रूप से ये सत्य नहीं है। भावनात्मक रूप से ठीक है, तो फिर ये बात आई कहां से, किसने कहा? तो क्यों आई ये बात? भक्तों से आई, क्योंकि हमारे भारत में भगवान के परम भक्त हुए। परम भक्त माना ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान को बहुत याद किया। बहुत याद करने का मतलब समझते ना, श्वासों श्वास स्मरण किया, उसको कहते हैं अजपा जाप, यानी मेरा एक श्वास भी भगवान की याद के बिना ना जाए। ऐसे भक्तों ने जो परम भक्त हुए उन्होंने कोशिश की। सुना है ऐसा? तो जो किसी को इतना याद करेगा वो क्या महसूस करेगा? उन्होंने क्या महसूस किया? घर में याद करते हैं तो भी उसका अनुभव होता है, मंदिर में है तो भी उसका अनुभव होता है, आश्रम में है तो भी अनुभव होता है, जंगल में है तो भी अनुभव होता है। तो क्या कहा? जिधर देखूं उधर तू ही तू है। फिर इतना प्यार है कि वो तो हृदय में बसा है, ऐसा उन्होंने कहा। दुनिया में भी इंसान के लिए भी, ये तो उन्होंने भगवान के लिए अनुभव किया, पर अगर हम मनुष्यों के लिए देखते ना तो भी यही भाव प्रकट होता है। किसी को किसी से बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है, तो वो क्या करता है? सारा टाइम उसको ही याद करता रहता है। खाएगा, कहीं जाएगा, काम करेगा, क्या होता है वही याद रहता है ना। भूलना चाहते हुए भी नहीं भूल पाते, और फिर कोई पूछेगा तो कहेंगे अरे वो तो दिल में बसा है। सिंबल भी क्या दिखाएंगे? हार्ट का सिंबल दिखाते हैं, प्रेम का जो सिंबल दिखाते हैं ना वो हार्ट का ही सिंबल दिखाते हैं। अब क्या कोई इंसान दिल में बसा होता है? होता है क्या? कहने का भाव है, प्रतीक है कि उसकी याद इतनी है, उसकी इतनी याद है कि उसको हम भूल नहीं सकते। तो ये भाव व्यक्त किया उन्होंने। कोई इंसान ना तो किसी के साथ हमेशा रह सकता है और ना ही कोई उसके दिल में हो सकता है। तो उन्होंने भी ईश्वर के प्रति, क्योंकि उन्होंने भगवान से इतना प्रेम किया, भगवान को इतना याद किया कि उन्होंने ये भाव ईश्वर के प्रति प्रकट किया कि वो हमारे दिल में बसाए। पर वास्तव में क्या भगवान दिल में है? नहीं, उसकी याद माना उसका स्मरण इतना है कि उन्होंने उस रूप में उसको कहा और हमने उसके शब्दों को ले लिया। तो इसीलिए परमात्मा हृदय में नहीं बसा। भगवान कहाँ रहते हैं आप चित्र में देख रहे हैं, परमात्मा परम धाम निवासी हैं, और इसीलिए हम उसको कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। आरती में गाते हैं ना हम, इस ब्रह्मांड के जो पार रहने वाला है वो परमात्मा है, या उसको हम ऊपर वाला भी कहते हैं, अंदर वाला नहीं कहते है ना। भले ही भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं तो भी कहाँ याद करते हैं उसको, कहाँ नजर जाती है? अंदर देख के याद करते हैं, ऊपर देख के याद करते हैं। तो अंदर में आत्मा जानती है ना, भगवान ऊपर में कहीं रहता है। इसलिए कई बार जो बात हम नहीं जानते हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाला मतलब वो ऊपर, इसलिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम, कि परमात्मा अपने धाम में भी ऊंचा है, यानी वो सर्वोच्च जो धाम है परम धाम, इस संसार से भी पार जो लोक है उस परम धाम के निवासी हैं। और आत्माएं भी सब परम धाम के निवासी हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है और पिता और बच्चों का घर एक ही होता है। और इसीलिए परमात्मा को हम परम धाम में याद करते हैं, क्योंकि वो परम धाम में निवास करते हैं। अब हम योग कहाँ लगाएंगे? मानो आपके माता पिता दिल्ली में रहते हैं या आप उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा में जिसको भी आप याद करते हैं, आपके दोस्त या माता पिता, तो आपका मन कहाँ जाता है? कहाँ ट्रैवल करेगा? वहीं जाएगा जहाँ वो रहते हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा परम धाम में रहते हैं तो हम उनको याद करेंगे तो मन कहाँ जाएगा? परम धाम में। तो राजयोग में हम परमात्मा शिव को परम धाम में याद करते हैं, और उनके ओरिजिनल रूप में जो उनका सत्य स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उस रूप में हम उनको याद करते हैं। तो ये राजयोग की विधि है कि परमात्मा को उनके सत्य स्वरूप से उनके धाम में याद करना, क्योंकि परमात्मा परम धाम निवासी हैं। फिर कई लोगों ने ऐसे कहा, जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने कहा, है ना, क्यों हमने भगवान को सर्वव्यापी माना। तो उन्होंने देखा कि जो आने वाला समय होगा, मनुष्य बहुत पाप करेगा कलयुग में, तो मनुष्यों को पाप से बचाने की कोई युक्ति हमें कहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, देखो जब तुम पाप करते हो तो ये मत समझो तुमको कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब जगह है और भगवान देख रहा है। तो जब कहा भगवान देख रहा है, तो उस समय तो सबने इस बात को माना, लोग पाप करने से डरते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे गया, जैसे हम देखते हैं आज साइंस और टेक्नोलॉजी की एज है, तो कौन मानता है कि भगवान देख रहा है और मुझे पाप नहीं करना चाहिए ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को माँ बाप जो कहते हैं वो मानता है ना। माँ घर में काम कर रही है और बच्चा छोटा है, उसको लगता है कहीं मैं अंदर बिजी हो जाऊं और ये घर से बाहर निकल जाए, तो उसको डराती है, तू जाना मत घर से बाहर नहीं तो तेरे को कुत्ता उठा के ले जाएगा या जो भी भूत आ जाएगा कुछ भी। तो बच्चा डरता है, दरवाजे तक जाएगा और बाहर नहीं जाएगा कि कहीं कुत्ता ना आ जाए ना। लेकिन जब वो 5-6 साल का हो जाएगा, अब वो डरता है कुत्ते से, अब उसको पता है कुत्ता क्या है, आप नहीं डरा सकते अभी, है ना। तो कुत्ते के बच्चे को भी उठाकर अंदर ले आएगा कि लो मैं ही ले आया। तो ऐसे ही जब मनुष्य ज्यादा समझदार हो जाते हैं, आज विज्ञान के युग में ये कोई नहीं मानता कि भगवान देख रहा है और हमें पाप नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो बातें कही गई, ये कोई प्रतीक के रूप में कही गई, और सचमुच परमात्मा सब जगह नहीं, लेकिन परमात्मा परम धाम निवासी हैं। अब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जैसे हमने देखा ना, अनेक मान्यताएं हैं, आत्मा सो परमात्मा है या आत्मा परमात्मा की संतान है, क्या कहेंगे? आत्मा सो परमात्मा है। हम गाते हैं ना मंदिर में, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो जब हम उसको मात पिता कह रहे हैं तो हम कौन हो गए? उसकी संतान हो गए ना। तो वो मात पिता है हमारा, और आत्मा परमात्मा हो भी नहीं सकती। जैसे एक बच्चा कभी अपना पिता नहीं हो सकता, एक बच्चा पिता के समान हो सकता है लेकिन पिता हो सकता है? कोई कहेगा देखो ये शक्ल में बिल्कुल पिता की तरह है, या ये गुणों में बिल्कुल पिता की तरह है, लेकिन फिर भी पिता से तो अलग है ना। कई बच्चे तो माता पिता से भी बढ़कर हो जाते हैं ना। आजकल माता पिता कोशिश भी करते हैं कि बच्चे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें, और करते भी हैं। तो फिर क्या वो पिता हो गए क्या? हाँ, अब माता पिता से बच्चे आगे निकल गए तो भी क्या कहेंगे? कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन पिता के सामने, माता पिता के सामने क्या है? वो बच्चे ही हैं। तो ऐसे ही आज हम जिन भी देवी देवताओं को, धर्म पिताओं को, गुरुओं को मानते हैं, वो परमात्मा के समान हो गए। माना उन्होंने वो पुरुषार्थ किया। आज हम देवात्माएं कहते हैं क्योंकि उनके अंदर वो दिव्य गुण है, ईश्वर के समान गुण उनके अंदर आए, तो हमने उनको भगवान का ही दर्जा दिया। हमने कहा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो धर्म आत्मा है, देवात्मा है। देवात्माएं अनेक हैं, जैसे कहा 33 करोड़ देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो देवात्माएं अनेक हैं, धर्म आत्माएं भी अनेक हैं, जिन्होंने धर्मों की स्थापना की वो भी अनेक हैं। ऐसे ही गुरु भी अनेक हैं, माना महान आत्माएं भी अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है, जो सर्वोच्च है वो एक है, जो इनके भी ऊपर है। यानी इन्होंने भी अपने गुण किससे प्राप्त किए, अपनी शक्तियां किससे प्राप्त की? ईश्वर से ही प्राप्त की। उन्होंने हमें उसकी ओर ही इशारा किया, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। जैसे एक कहानी आती है कि एक बार एक राजा था, बहुत दानवीर था, तो हर दिन पूजा के बाद जो भी महल के बाहर आता था उसको वो दान देता था। तो एक भिखारी रोज आता था, क्योंकि सहज हो जाता था उसके लिए, उसको फिर भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। तो एक दिन वो थोड़ा जल्दी आ गया, राजा अभी पूजा ही कर रहा था, तो उसने द्वारपाल से कहा कि मैं देख सकता हूँ राजा क्या पूजा करता है। तो उसने कहा देख सकते हो, लेकिन पीछे खड़े रहना, आगे नहीं जाना। तो वो गया वहाँ और देखा क्योंकि पूजा समाप्त होने वाली थी, तो राजा अपने हाथ फैलाकर भगवान से कह रहा है कि हे ईश्वर, तू मेरी झोली सदा ऐसे ही भरते रहना ताकि मैं ऐसे ही सबको दान कर सकूं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा ये राजा भी मांग रहा है मतलब मैं तो मांगता ही हूँ आकर के, पर ये भी मांग रहा है, और ये किससे मांग रहा है। तो उसने देखा वो हनुमान जी का भक्त था राजा जो है, तो उसकी बुद्धि चलनी शुरू हो गई। तो ये हनुमान जी, और ये हनुमान जी राम जी से मांगते हैं, है ना, और राम जी शिव जी से मांगते हैं, और मैं ये राजा भी बहुतों को दान देते हैं, वो एक एक से आते आते मेरे पास कितना कम हो जाता है कि मैं भिखारी का भिखारी ही हूँ। तो उसने सोचा फिर क्यों ना मैं शिव जी से ही मांगू सीधा, जब ये मांगते हैं और इनको इतना मिलता है तो मैं भी डायरेक्ट भगवान से मांगू, मुझे भी इतना मिल जाएगा कि फिर मुझे कभी भीख मांगने आना ही नहीं पड़ेगा। तो ये है डायरेक्ट परमात्मा के साथ संबंध से प्राप्ति। एक होता है इनडायरेक्ट, माना अपरोक्ष रूप से। दुनिया में भी हम देखते हैं ना, मेरा बेटा है उसका जितना अधिकार है, और मेरे भाई का बेटा है क्या उसका भी मेरे पर उतना ही अधिकार है? है? चलो वो आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे? कुछ खुश कर देंगे उनको, कोई गिफ्ट दे देंगे, थोड़ा पैसा दे देंगे, है ना। लेकिन वारिस कौन है? वारिस कौन है? आपकी संपत्ति का मालिक कौन है? बेटा है ना। तो डायरेक्ट संबंध जिसका है वो पूरा अधिकारी है, जो इनडायरेक्ट रूप में मेरे संबंध में आ रहा है वो कुछ कुछ प्राप्ति कर पाएगा। ऐसे ही हम आज भगवान से इनडायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं, वाया वाया, किसी देवता के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से, किसी धर्म पिता के माध्यम से। तो कितना मिल रहा है हमें? डायरेक्ट संबंध नहीं हो रहा ना, तो कितना मिल रहा है? थोड़ा थोड़ा। तो वो प्राप्ति जो हमें ईश्वर से होनी चाहिए, जो संबंध का अनुभव हमें होना चाहिए, जो ईश्वर से प्यार का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए वो कोशिश करते हुए भी हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। तो राजयोग में हम डायरेक्ट परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं, और सर्व प्राप्ति के, यानी जैसे कहा उसके पूरे वर्षे के अधिकारी हम बनते हैं। तो ये अंतर आ जाता है कि जब हम डायरेक्ट ईश्वर से अपना संबंध अनुभव करते हैं, बीच में और कोई भी नहीं। अब परमात्मा का कर्तव्य क्या है? तो परमात्मा का कर्तव्य हम क्या समझते हैं? इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, अगर हम कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो, ऐसा ही कहते हैं ना, पत्ता पत्ता कौन हिला रहा है, ऐसा ही सुनते हैं ना। फिर इस संसार में भूकंप आ रहे हैं या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है, आंधी तूफान, ये किसका प्रकोप है, किसका प्रकोप है, है ना, ऐसे कहते हैं। तो वास्तव में परमात्मा अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है, ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान ये छोटे छोटे कार्य नहीं करता, जैसे कहा ना, वो तो ऊंचा ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा काम। क्या प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद वाले हैं, वो सफाई का काम करेंगे? करेंगे क्या? आप कहेंगे उनको जाकर के कि मेरे जो मोहल्ले की नाली है वो बंद हो गई है, उसको साफ कर दो या साफ करवा दो? क्योंकि अलग अलग विभाग बने हुए हैं और वो जिम्मेवार हैं वो सब काम करने के लिए। तो जैसे कहा, परमात्मा भी खुद नहीं करते हैं, वो भी तीन देवताएं मुख्य हैं, जैसे मिनिस्ट्री होती है, विभाग माना अलग अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है, वो जिम्मेवार हैं। तो स्वच्छता के लिए जो जिम्मेवार हैं, जैसे कहा ना नगर पालिका है, वो मेयर हैं, वो उनके सब जो अधिकारी हैं वो उसके लिए जिम्मेवार हैं, तो वो सब नियुक्त किया हुआ होता है, वो व्यवस्था बनी हुई होती है। तो परमात्मा की भी व्यवस्था बनी हुई है, ये जो कार्य हैं, पत्ता पत्ता हिल रहा है या भूकंप आ रहा है या बाढ़ हो रही है, जो भी है, ये किसका कार्य है? प्रकृति। तो संसार में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन अनादि शक्तियां हैं, तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। अनादि माना सदा ही है, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है और प्रकृति भी अनादि अविनाशी है। तो इन तीनों के मेल से, यानी आत्मा और प्रकृति के मेल से ये विश्व चलता है, सृष्टि चलती है, और परमात्मा, परमात्मा जो है इसके क्रिएटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। क्रिएटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मतलब वो इस रंगमंच पर जो भी ड्रामा है इसका हिस्सा नहीं है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कोई फिल्म प्रोड्यूस करता है या नाटक प्रोड्यूस करता है तो वो मालिक है उसका, लेकिन वो एक्टर नहीं होता है। एक्टर अलग होते हैं, उसके हीरो हीरोइन और दूसरे एक्टर सब अलग हैं, लेकिन जो फिल्म का प्रोड्यूसर है वो उसको पूरी तरह से निर्माण करने की जिम्मेवारी वाला होता है, और अगर वो उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहे तो कर भी सकता है, अगर वो कहानी में कुछ परिवर्तन करना चाहता है। तो परमात्मा भी इस सृष्टि के एक्टर नहीं है, यानी वो इस संसार में जन्म मरण में नहीं आते हैं, कर्म फल में नहीं आते, वो सुख दुख में नहीं आते, इसलिए कहा वो सबसे न्यारा है और वो लिबरेटर है, मुक्तिदाता है, क्योंकि वो स्वयं मुक्त है। जो स्वयं मुक्त है वही मुक्त कर सकता है, जो खुद जेल में है वो किसी दूसरे जेल वाले को छुड़ा सकता है? छुड़ाने वाला कौन होगा? जो बाहर है, जो खुद जेल से बाहर है। जैसे हम कहते हैं जो रेस्क्यू टीम होती है वो जो फंसे हुए हैं उन लोगों से अलग होते हैं, तभी वो रेस्क्यू कर पाते हैं। तो परमात्मा स्वयं इस संसार के बंधनों से मुक्त है, वो हमारी तरह जन्म मरण में नहीं आता, इसीलिए हम शिव को शंभु भी कहते हैं। शंभु भी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयं भू। संस्कृत में भू का अर्थ होता है उत्पन्न होना, तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ है वो शिव है। उसका मनुष्य के समान गर्भ से जन्म नहीं होता है, जैसे मनुष्यों का जन्म होता है इसलिए मृत्यु भी होती है, लेकिन परमात्मा मनुष्यों के समान जन्म में नहीं आते और इसीलिए उनकी वो मृत्यु भी नहीं है तो फिर कर्म भी नहीं है। बाकी सब का जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, देवी देवताओं का भी जन्म होता है, धर्म पिताओं का भी जन्म होता है, गुरुओं का भी जन्म होता है, तो जिसने शरीर लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो परमात्मा न्यारे हैं और इसीलिए वो सर्वोच्च हैं, क्योंकि उनके कोई माता पिता नहीं, उनका कोई शिक्षक नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। वो पिताओं के भी पिता हैं, वो शिक्षकों के भी शिक्षक हैं और वो गुरुओं के भी गुरु हैं। जिसके भी माता पिता शिक्षक गुरु हैं वो उनसे हमेशा ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये तीन संबंध मनुष्य के जीवन में हमेशा ऊंचे होते हैं। आपने किसी से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा, वो अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे और आप बन गए अफसर, लेकिन जब उनको मिलेंगे तो क्या कहेंगे? ये मेरे शिक्षक हैं, माना गुरु है जो भी, तो हमेशा हम उनको सम्मान देंगे क्योंकि उन्होंने हमको वो शिक्षा दी तो हम आज इतने ऊंच पद पर पहुंचे। तो ये तीन पद मनुष्य के जीवन में हमेशा ऊंचे होते हैं और परमात्मा इन सब से न्यारा है। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा का जो कार्य है वो बहुत न्यारा और अलौकिक है, उनका कर्तव्य दिव्य है। वो ये सब कार्य नहीं करते जो हम समझते हैं, मानो किसी के घर में बच्चा जन्म हुआ भगवान ने दिया, किसी कारण से बच्चे की मृत्यु हो गई भगवान ने ले लिया, तो भगवान ने ले लिया नहीं, हमारे कर्मों से बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है। और कोई हमारे कर्म ही ऐसे हैं या कर्म समाप्त हो गए उसके हमारे साथ तो वो बच्चा चला गया। तो परमात्मा तो सदा सुख दाता है, वो दुख नहीं देता है, वो दुख हरता सुख करता है, इसलिए हम उसे याद करते हैं। हमारे कर्मों से ही हम दुखी होते हैं और हमारे कर्मों से ही हम सुख पाते हैं, क्योंकि आत्मा में स्वयं बुद्धि विवेक है और बुद्धि विवेक से आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान की मर्जी से हम कर्म नहीं करते, हम अपने संस्कारों के अनुसार कर्म करते हैं। किससे कर्म कर रहे हैं हम? हमारे बुद्धि विवेक से हम जो निर्णय ले रहे हैं उस अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमारे कर्मों के लिए जिम्मेवार नहीं है और इसीलिए उसका जो फल हमारे सामने आता है उसके लिए भी वो जिम्मेवार नहीं है। कई बार हम भगवान को दोषी बनाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ना हमेशा ही मेरा बुरा करता है, या जो भी। कई बार हम उंगली उठाते हैं ना भगवान की तरफ, तो कई तो इसके कारण भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं कि मेरी जिंदगी में ये जो बुरा हुआ ये भगवान ने किया। तो भगवान हमारा बुरा कभी भी नहीं करता है, हमारे कर्मों के अनुसार होता है। और कई कहते हैं वो अंतर्यामी है, हमारे अंतर को जानता है। नहीं, वो हमारा रचयिता है, इसीलिए वो हमें जानता है। परमात्मा हमें रचने वाला है, जैसे एक इंजीनियर मशीन को बनाता है तो वो जानता है कि इस मशीन में कौन से पुर्जे कहाँ कहाँ हैं, कोई खराबी आएगी तो फटाफट उसको ठीक कर देगा। तो इंजीनियर कोई मशीन में बैठा थोड़ी है। ऐसे ही परमात्मा इस संसार का रचयिता है, इसलिए संसार में जब खराबी होती है, जब अव्यवस्था होती है, जैसे कहा कलयुग आ जाता है, मनुष्य सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, तब परमात्मा को पता है कि इसे फिर से कैसे सतो प्रधान बनाना है, कैसे फिर जैसे कहा परमात्मा कब इस सृष्टि पर आते हैं, कब अपना कार्य करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजानम। फिर आगे कहते हैं प्रणीत्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवानी युगे युगे। तो परमात्मा इस धरा पर तब आते हैं जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है। तो फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा को इस सृष्टि पर आना होता है। तो उसका कर्तव्य दिव्य और ऊंच है, और जिसके लिए कहा कि वो तीन देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा अपना ये कार्य कराते हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश। तो अभी परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा शिव वर्तमान समय अवतरित होकर के, क्योंकि वो निराकार हैं और वो मनुष्य के समान जन्म नहीं लेते, तो वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं जिससे वो ब्रह्मा नाम देते हैं, और उनके द्वारा वो सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये जो राजयोग आप सीख रहे हैं ये स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, और वो स्वयं ही हमें परिचय देते हैं। जैसे माता पिता स्वयं ही बच्चे को बताते हैं कि हम आपके माता पिता हैं, तभी बच्चा जान पाता है। अगर जन्मते ही बच्चे को किसी दूसरे को दे दिया जाए और उसे न बताया जाए आपके असली माता पिता कौन है, तो वो क्या कभी जान पाएगा कि मेरे माता पिता कौन है? नहीं। तो माता पिता ही खुद बच्चे को अपना परिचय देते हैं। ऐसे ही भगवान जो हमारा माता पिता है, वो स्वयं ही इस धरा पर जब अवतरित होते हैं तो वो अपना परिचय हमें देते हैं। तो हमें परमात्मा के द्वारा ही, खुद खुदा के द्वारा ही हमें ये खुद का भी परिचय मिला और खुदा का भी परिचय मिला, जो आज आपने सुना। तो अभी 2 मिनट हम परमात्मा चिंतन करेंगे, जो हमने परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त किया। थोड़ा योग करेंगे 2 मिनट। तो आप सभी सीधे होकर बैठ जाएं। और जैसे विचार मैं आपको दूंगी उन विचारों को मन में स्मरण करते हुए आप अनुभव करेंगे, अपने मन को कुछ समय के लिए न्यारा कर लें, आसपास के व्यक्तियों से, आवाजों से, मस्तक के मध्य में स्वयं को आत्मनिश्चय करें, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक मैं अजर अमर अविनाशी हूं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए मैंने शरीर धारण किया है, स्वरूप हूं, शांति में ही सुख समाया है, शांति ही शक्ति है, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है, जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, मेरे परम पिता शिव बाबा परम धाम में निवास करते हैं, स्वयं को महसूस करें, मैं शिव बाबा के सम्मुख हूं, बाबा आप शांति के सागर हो, आपकी शांति से मेरा मन शांत होता जा रहा है, आप सर्वशक्तिवान हैं, ईश्वरीय शक्तियां मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूं, जब परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं तो मैं जो परिवर्तन लाना चाहूं ला सकती हूं, बाबा आप प्यार के सागर हो, आप ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हो, आपने मुझे अपना बनाया, इस ईश्वरीय प्यार को पाकर मेरे जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण हो गई है, आप ही मेरे सद शिक्षक हो, सद्गुरु हो। मुझे सद्बुद्धि सद्विवेक प्रदान करने वाले हो। सदा कल्याणकारी हो। मेरी मुश्किलों को आसान करने वाले सदा दाता हो। आपकी याद से मेरा मन पावन होता जा रहा है। मैं बहुत हल्कापन न्यारापन महसूस कर रही हूँ। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस भौतिक जगत में अपने शरीर में देख रही हूँ, लेकिन अब मेरा मन अधिक शांत और शक्तिशाली है।